ज्ञान संकुली तंत्र लुप्त प्राय सांभवी तंत्र का एक भाग है। इसकी भी पूर्ण पांडुलिपि उपलब्ध नहीं हो सकी है। लुप्त प्राय सांभवी तंत्र का नामोल्लेख राजेंद्र लाल मिश्र संग्रस्त उत्पत्ति तंत्र में प्राप्त होता है। यद्यपि यह तंत्र अपने पूर्ण रूप में शाहजहां के समकालीन कविंद्राचार्य सरस्वती के संग्रह में उपलब्ध था, परंतु अब इसका केवल नामोल्लेख पढ़कर ही संतोष प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान संकुली तंत्र में महादेव ने उमा देवी को वेदांत सार सर्वस्व का ज्ञानोपदेश दिया है। इसमें प्रणव प्रशंसा, स्थूल देहादि के लक्षण तथा आत्मयोग प्रतिपादित है। इस तंत्र की पांडुलिपि एशियाटिक बांग्ला सोसाइटी की ग्रंथ संख्या 6035 के रूप में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह ग्रंथ बंग साहित्य परिषद और राजेंद्र लाल मिश्र सूची पत्र में भी अंकित है। ग्रंथ क्षुद्रकाय होने पर भी सार तत्व समन्वित होने के कारण स्वाध्याय के लिए अत्यंत उपादेयी प्रतीत होता है। कुछ वर्ष पूर्व हरिद्वार में चंडी पर्वत के निकट रहने वाले महात्मा के पास से दक्षिण भारतीय भाषा में एक सज्जन को एक अनाम पांडुलिपि प्राप्त हुई थी। उस पांडुलिपि में जिस संस्कृति भाषा का उपयोग किया गया है उसकी रूपरेखा पाणिनी से भी पूर्व की प्रतीत होती है। उस ग्रंथ में करीब 700 श्लोक अंकित है। उस ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में 110 श्लोक यानी 700 के अतिरिक्त अंकित है, जो प्रचलित ज्ञान संकुली के श्लोकों से मिलते जुलते हैं। प्रतीत होता है कि वह 700 श्लोकों का ग्रंथ ही सांभवी तंत्र है। वह तंत्र हठ योग, तंत्र तथा राजयोग की त्रयी का अपूर्व रूप प्रस्तुत करता है। उस तंत्र के परिशिष्ट के रूप में जो 110 श्लोक जोड़े गए हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान संकुली तंत्र सांभवी तंत्र का एक भाग है। उक्त सांभवी तंत्र के प्रकाशन की भी शीघ्र व्यवस्था की जा रही है। मैंने सांभवी तंत्र पे भी उसके एक छोटे अध्याय पे भी ऑडियो बुक बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्ञान संकुली तंत्र। कैलाश शिखर पर आसीन जगतगुरु कैलाशपति महादेव देवाधिदेव से महादेवी पार्वती ने जिज्ञासा किया कि हे महेश्वर, ज्ञान किसे कहते हैं? देवी ने यह भी जिज्ञासा किया कि हे देव, यह विश्व सृष्टि कहां से होती है? कैसे इस सृष्टि का विनाश होता है? जो ब्रह्म ज्ञान सृष्टि तथा संहार की प्रक्रिया से रहित है कृपया उसे कहिए। ईश्वर कहते हैं, यह सृष्टि अव्यक्त से ही होती है और अव्यक्त से ही इसका विनाश भी संपन्न होता है। अव्यक्त ही सृष्टि संसार से रहित ब्रह्म ज्ञान है। ओंकार से ही 14 विद्या, मंत्र, पूजा, तप, ध्यान, कर्म, अकर्म का और चारों वेद, षड वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र तथा पुराण, इन चतुर्दश विद्याओं का उदय होता है। जब तक इन चतुर्दश विद्या का ज्ञान नहीं होता तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते ही समस्त विद्याएं स्थिर हो जाती है। वेद शास्त्र पुराण प्रभृति का ज्ञान सामान्य गणिका स्त्री के समान जहां चाहे तहां उपलब्ध हो जाता है, अतः उन्हें प्रकाशित किया जा सकता है। परंतु सांभवी विद्या को उसी प्रकार से गुप्त रखना चाहिए जैसे कुलवधू गुप्त रहती है। देह में समस्त विद्या, देवता तथा तीर्थ समूह विराजित रहते हैं। देह में ही गुरु वाक्य से इन सब का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य को अध्यात्म विद्या ही सुखदायक तथा मोक्षदायक होती है। इसके समान अन्य कोई भी विद्या नहीं है। इसी के साधन से मुक्ति प्राप्त होना संभव है। समस्त धर्म कर्म जब तप का निर्वतन इसी अध्यात्म विद्या में ही होता है। जैसे काष्ठ में अग्नि और पुरुष में गंध है, जैसे जल में अमृत विद्यमान है, उसी प्रकार देह में पुण्य पाप रहित परमात्मा का निवास है। दिहस्ता इड़ा नाड़ी गंगा है, पिंगला ही यमुना है और इन दोनों के मध्य सुषुम्ना सरस्वती रूपेण विराजित है। जहां इन तीनों का संगम होता है वही देह मध्य बिंदु त्रिवेणी है। यह तीर्थराज है, इसमें स्नान द्वारा समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवी कहती है, हे महेश्वर, खेचरी मुद्रा कैसी है? सांभवी विद्या किसे कहा जाता है? अध्यात्म विद्या किस प्रकार की है? कृपया उपदेश करिए। ईश्वर कहते हैं, जिस मुद्रा के द्वारा बिना किसी अवलंबन मन स्थिर हो जाता है, बिना रोके वायु निबद्ध हो जाता है, बिना दर्शन के ही दृष्टि की स्थिरता संपादित होती है, उसे खेचरी मुद्रा कहा गया है। जैसे बालक अथवा मूढ़ की चित्त वृत्ति स्वप्न जैसे कल्पना लोक में विचरती रहती है, उसी प्रकार जिस विद्या का आश्रय लेने पर देहस्थ शून्याकाश में बिना अवलंबन के ही चित्त विचरने लगता है, उसे ही सांभवी विद्या कहते हैं। देवी कहती है, हे देवदेव, जगन्नाथ, परमेश्वर, दर्शन पृथक पृथक क्यों है? ईश्वर कहते हैं, जो त्रिदंडी है वे भगवत भक्त हैं और सदा वेदाभ्यास में लगे रहते हैं। जो साक्त हैं वे शक्ति उपासक हैं, वे प्रकृति वादरथ हैं। बौद्धगण शून्यवादी हैं। जो त्रिदंडी साक्त तथा बौद्ध मत से ऊर्ध्व हैं, अतीत हैं, वे ही यथार्थ तत्वज्ञ हैं। विषयाश्रयी जड़वादी चरवाक मतावलंबी व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। उमा देवी पूछती है, हे देव, पिंड ब्रह्मांड पंचभूत का लक्षण क्या है? 25 गुण कैसे होते हैं? ईश्वर कहते हैं, अस्थि मांस नख त्वचा रोम पृथ्वी तत्व के गुण हैं। शुक्र शोषित मज्जा मल मूत्र को जल का गुण कहा गया है। निद्रा क्षुधा तृष्णा क्रांति तथा आलस्य को तेज का गुण कहते हैं। धारण चालन क्षेपण संकोचन तथा प्रसारण को वायु का गुण कहा गया है। काम क्रोध लोभ मोह तथा लज्जा प्रभृति आकाश के गुण हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का लय जल में, जल का लय अग्नि में, अग्नि का लय वायु में तथा वायु का लय आकाश में हो जाता है। पंच तत्वों से सृष्टि होती है और तत्व में तत्व विलीन होते हैं। इन पंच तत्व से अतीत जो तत्व है वह सबसे अतीत है, निरंजन है, तत्वातीत है। स्पर्श रसास्वादन सूंघना देखना तथा सुनना ही पांचों इंद्रियों का पंच तत्व है। मन ही समस्त इंद्रियों का कारण है। ब्रह्मांड के समस्त लक्षण देह में स्थित है। इनमें जो साकार है उसका तो विनाश हो जाता है, परंतु जो निराकार है उसका विनाश नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन निराकार अवस्था को प्राप्त है वह निराकार के समान अविनाशी हो जाता है। अतः समस्त प्रयत्नों के द्वारा साकार का त्याग करें। देवी कहती है, हे आदिनाथ, सप्त धातुओं का रूप क्या है? आत्मा अंतरात्मा तथा परमात्मा क्या है? उसे विशेष रूप से कहने की कृपा करिए। ईश्वर कहते हैं, शुक्र रक्त मज्जा मेद मांस अस्थि चर्म रूपी सप्त धातु देह में है। देह को आत्मा, मन को अंतरात्मा तथा शून्यमय को परमात्मा कहा जाता है। मन भी इसी शून्यमय आत्मा में प्रविलीन हो जाता है। रक्त धातु माता है, शुक्र धातु पिता है, शून्य धातु प्राण है। इन तीनों के योग से गर्भपिंड बनता है। देवी कहती है, किस प्रकार से वाक्य उत्पत्ति लय तथा निर्णय होता है। हे महेश्वर, कृपया यह कहने की अनुकंपा करें। ईश्वर कहते हैं, अव्यक्त से प्राण की उत्पत्ति होती है, उस प्राण से मन और मन से वाणी का उदय होता है, अंत में वाणी भी मन में विलीन हो जाती है। देवी कहती है, सूर्य कहाँ निवास करते हैं, चंद्रमा, वायु एवं मन का निवास स्थान कहाँ है। ईश्वर कहते हैं, हे महादेवी, तालु मूल में चंद्रमा, नाभि में सूर्य का निवास है, वायु का निवास सूर्य के अग्रभाग में तथा मन का निवास चंद्र के अग्रभाग में है। सूर्य के अग्र में चित्त का और प्राण का निवास चंद्रमा के अग्रभाग में है। गुरु के उपदेश से ही इनका लाभ सम्यक रूपेण हो सकता है। देवी कहती है, शक्ति कहाँ अवस्थित है, शिव का निवास कहाँ है, काल का अवस्थान कहाँ पर है, जरा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ईश्वर कहते हैं, पाताल में शक्ति है, ब्रह्मांड में शिव का निवास है, अंतरिक्ष में काल का वास है, उसी से जरा भी उत्पत्ति होती है। देवी कहती है, कौन आहार की इच्छा करता है, कौन भक्षण तथा पान करता है, जागृत स्वप्न तथा सुसुप्ति में कौन प्रबुद्ध रहता है। ईश्वर कहते हैं, प्राणों को आहार की अभिलाषा रहती है, हुताशन भोजन करते हैं, जागृत स्वप्न तथा सुसुप्ति में वायु जागृत रहती है। देवी जिज्ञासा करती है, कौन कर्म फल देता है, कौन पाप लिप्त होता है, कौन पाप से विमुक्त हो जाता है। महादेव कहते हैं, मन पाप करता है, वही पापों में लिप्त होता है, जब वह पुण्य पाप में लिप्त नहीं होता तब तन्मय हो जाता है, उस समय वह इन दोनों से अतीत है। देवी कहती है, जीव कैसे सेवत्व प्राप्त करता है, किस कार्य के कारण को, किस कार्य के कारण को तथा तुष्टि साधन को इसमें मुख्य समझा जाए। महादेव कहते हैं, जीव भ्रांति से आबद्ध रहता है, जो भ्रांति मुक्त है उसे ही सदाशिव कहते हैं, तुम ही कार्य एवं कारण हो, इसका बोध होना ही श्रेष्ठ कार्य है। मन कहीं है, शिव शक्ति अन्यत्र है, पवन कहीं और है, तब भी अज्ञानीगण यह तीर्थ वह तीर्थ कहकर तीर्थों में दौड़ते हैं। है वरान ने, जिसे आत्मतीर्थ का ज्ञान नहीं है उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। केवल कोई ग्रंथ ही वेद नहीं है, सनातन ब्रह्म ही वेद है। जो ब्रह्म विद्या में रत है अथवा ब्रह्म ज्ञान की आराधना में लीन है वही वेद परायण है। चारों वेदों तथा समस्त शास्त्रों का मंथन करके उसके नवनीत का पान योगीगण करते हैं। पंडितों को तो केवल उसका तक्र अथवा असार अंश ही मिलता है। समस्त शास्त्र उच्छिष्ट हो चुके हैं, समस्त विद्या एक मुख से अन्य मुख में संचार करती है, परंतु ब्रह्म ज्ञान उच्छिष्ट नहीं है, यह अव्यक्त तथा चैतन्यमय है। समस्त तपस्याओं में उत्तम है ब्रह्मचर्य। जो ऊर्ध्व रेतस होकर ब्रह्मचर्य में विचारण करते हैं वे मनुष्य नहीं देवता है। साकार रूपादि का ध्यान ध्यान नहीं है, शून्य ध्यान ही यथार्थ ध्यान है। इसे भ्रम भी शून्यगत हो जाता है। इस ध्यान की कृपा से सुख तथा मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। केवल अग्नि में घृत आदि की आहुति ही होम नहीं है। ब्रह्म ज्ञानात्मक अग्नि में प्राण घृत की आहुति से ही वास्तविक होम कर्म होता है। पाप कर्म का भविष्य में फल होगा ही, अतः विद्वान व्यक्ति पापकारी विषयों का त्याग करते रहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं हो पाता तब तक वर्ण भेद रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर वर्ण भेद तथा कुल भेद समाप्त हो जाता है। देवी कहती है, हे शंकर, आपने जिस ज्ञान का वर्णन किया है उसे तो मैं भी अवगत नहीं हूं। हे देवेश, मन का लय कहाँ तथा किस प्रकार से होता है इसे कहिए। ईश्वर कहते हैं, जहां मनवान तथा कर्म लय को प्राप्त होते हैं और स्वप्न रहित निद्रा की तरह अवलंबन रहित स्थिति में जिस ज्ञान का उदय होता है वही ब्रह्म ज्ञान है। एकाकी, निष्प्रिय, शांत, निश्चित, निद्रा रहित तथा बालक भावानापन्न अवस्था को ब्रह्मज्ञान कहते हैं। तत्वदर्शी विद्वान जिसका उल्लेख करते हैं उसका मैं आधे श्लोक में वर्णन करता हूं। सर्वचिंता परित्याग करके निश्चिंत होना ही योग है। जो एक अथवा अर्धक्षण पर्यंत भी समाधि को प्राप्त हो जाते हैं उनके सैकड़ों जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। देवी कहती है, हे देव, शक्ति तथा शिव किसका नाम है? पहले इसे बतला कर तब अन्य ज्ञानोपदेश दीजिए। ईश्वर कहते हैं, हे देवी, शक्ति चंचल चित्त में निवास करती है, स्थिर चित्त में शिव अवस्थित रहते हैं। जो स्थिर चित्त है वह जीते जीते सिद्धि प्राप्त करता है। देवी कहती है, त्रिविध शक्ति तथा षट चक्र कहाँ है? 29 ब्रह्मांड तथा 7 पातालों की सत्ता कहां पर स्थित है? महादेव कहते हैं, कंठ में ऊर्ध्व शक्ति है, गुहा में अध शक्ति एवं नाभि में मध्य शक्ति का निवास है। इन तीनों शक्ति से अतीत निरंजन ब्रह्म भ्रूमध्य में अवस्थित रहता है। मूलाधार गुहदेश में है, लिंग मूल में स्वाधिष्ठान है जो समस्त चक्रों से अतीत है। उन चक्रातीत निरंजन को नमस्कार। ललाट के ऊर्ध्व भाग को ब्रह्मलोक तथा अधो भाग को पाताल कहा जाता है। ऊर्ध्व भाग मूल है, अध भाग शाखा है। इस प्रकार जीव का शरीर वृक्ष के आकार वाला है। देवी कहती है, हे शिव शंकर, 10 वायु देह में कैसे रहती है और 10 द्वार क्या है? ईश्वर कहते हैं, प्राण वायु हृदय में, अपान वायु गुहदेश में, समान नाभि में तथा उदान कंठ में स्थित है। व्यान का स्थान संपूर्ण शरीर में है। नाग वायु ऊर्ध्वस्थ है, कूर्म वायु तीर्थों में स्थित है, कृकर वायु क्षोभस्थ है, देवदत्त वायु जृंभनस्थ है, धनंजय वायु नाद घोष में प्रविष्ट होकर साम्य हो जाती है। ये 10 वायु निरालंब हैं और देह स्थित है। यह योग सम्मत है। 10 द्वारों में 9 प्रत्यक्ष है, 10म द्वार है मन। देवी कहती है, अब सारे शरीर में अवस्थिता नाड़ियों के संबंध में कहिए। कुंडलिनी शक्ति और उससे निर्गत 10 नाड़ी समूह का भी वर्णन करिए। ईश्वर कहते हैं, शरीर में स्थित इड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ी ऊर्ध्वगामिनी है। गांधारी हस्ती जिह्वा तथा प्रसवा नामक नाड़ी त्रय समस्त देह में परिव्याप्त है। अलंबुषा तथा यशा नाड़ी दाहिने अंग में और कुहु एवं शंखनी नाड़ी वाम अंग में है। शरीर में 72,000 नाड़ियां रहती है। 10 नाड़ियों से अनेक अन्य नाड़ियां भी बहिर्गत होती है। जो योगी इन्हें जानते हैं वे ही योगविद हैं। ज्ञान नाड़ी योगी गण को सिद्धि देती है। देवी कहती है, हे भूतनाथ, हे महादेव, हे परमेश्वर, तीनों देवता कैसे हैं? उनके त्रिविध भाव तथा गुण क्या क्या हैं? विस्तार पूर्वक कहिए। ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मा रजो भाव में, विष्णु सत भाव में तथा शिव क्रोध भाव में स्थित हैं। सत्व रज तथा क्रोध इनका त्रिविध गुण है। ये तीनों देवता एक मूर्ति हैं। जो व्यक्ति इन्हें अलग मानता है वह मुक्ति नहीं प्राप्त करता। ब्रह्मा वीर रूप हैं, हरि वायु रूप हैं और रुद्र मनोरूपेण विद्यमान हैं। दया भाव में ब्रह्मा, शुद्ध भाव में हरि तथा अग्नि भाव में रुद्र का अधिष्ठान रहता है। इन तीनों देवताओं के तीन प्रकार के गुण हैं। शरीर में तीन देवताओं के तीन प्रकार की अवस्था हेतु गुंत्र विभक्त रूप से प्रकटित है। समस्त ब्रह्मांड एक परम ब्रह्म से उत्पन्न है। इस संबंध में जिसके मन में नाना प्रकार के भावों का उदय होता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात एकात्म भाव से ही मुक्ति मिलती है। हे देवी, मैं ही सृष्टि, काल, ब्रह्म, हरि, रुद्र, व्योम रूपी शून्य में तथा सर्वव्यापी तथा निरंजन हूँ। मैं ही सर्वात्मक निष्काम निष्प्रस तथा गगनोपम हूँ। मैं सीमाहीन स्वभाव निर्मल हूँ। स्वयं में नित्य रूप से अवस्थित रहता हूँ। मैं ही शिव हूँ। जो व्यक्ति जितेंद्रिय वीर है, ब्रह्मचारी तथा सुपंडित है, सत्यवादी, दाता तथा धीर है और सबका हित करने वाला है, वही भक्त है। ब्रह्मचर्य तप का तथा दया ही धर्म का मूल है। अतएव सर्व प्रयत्नों के द्वारा दया धर्म का आश्रय लेना चाहिए। देवी कहती है, हे योगेश्वर, जगन्नाथ, उमा के प्राणवल्लभ, अब वेद, संध्या, तपस्या, ध्यान, होम कर्म तथा कुल के संबंध में कहिए। ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी अनुष्ठान उसका 1/16 भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा सर्व तीर्थ गमन के तुलना में 16 गुणित अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जिन गुरु की कृपा से परम पद की प्राप्ति होती है, उनके समान मित्र, पिता, पुत्र, बांधव, स्वामी, पति कोई भी नहीं है। जिनकी कृपा से परम पद प्राप्त होता है, उन गुरु के समान न तो कोई विद्या है, न तीर्थ देवता आदि ही है। यदि गुरु द्वारा शिष्य को ही एक अक्षर का मंत्र मिला है, तब भी पृथ्वी में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस ऋण को उतार सके। ब्रह्म ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, इसे हर किसी को देना उचित नहीं है। इसे सदगुरु द्वारा केवल भक्त शिष्य को देना चाहिए। मंत्र, पूजा, तप, ध्यान, होम, जप, बलिकर्म, संन्यास तथा लौकिक कर्मों को बुद्धिमान ब्रह्मज्ञानी त्याग देता है। संसार के अनेक दोष हैं, निसंग के अनेक गुण हैं, अतः योगों को संग का त्याग करना चाहिए। अ सत्वगुणमय है, उ रजोगुणमय कहते हैं, म तमोगुणमय है। इन तीनों का समाहार है प्रकृति। अक्षर ही प्रकृति है और अक्षर ही ईश्वर है। ईश्वर से प्रकृति बहिर्गता होती है। यह प्रकृति सत्वादि गुणों से युक्त है। माया ही सृष्टि स्थिति संहार कारणी है। यही है अविद्या मोहिनी तथा शब्द रूपा यशस्विनी देवी। अ ऋग्वेद, उ यजुर्वेद, म सामवेद, तीनों का मिलन रूप अथर्ववेद है। पलूत स्वर युक्त ओंकार ही त्रिनाद है। अकार पृथ्वी, भूर्लोक, उ भूवरलोक, म मकार स्वर्गलोक। शास्त्र में इन अक्षर त्रय द्वारा आत्मा प्रतिभात होती है। अकार पृथ्वी पीतवर्ण, उकार अंतरिक्ष विद्युत वर्ण, म स्वर्लोक शुक्ल वर्ण। एकाक्षर ओम ही ब्रह्म है। चिंता तथा निद्रा का त्याग करके नित्य ही स्थिर आसन में बैठने से शीघ्र योगी पद प्राप्त होता है। यह निसंदिग्ध है। यह है शिव की उक्ति। जो इस ब्रह्म विषयक उपदेश को नित्य सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक प्राप्त करता है। देवी कहती है, सूक्ष्म स्थूल देह का लक्षण कैसा है, मन कैसे लय युक्त होता है, परमार्थ का तथा निर्वाण का लक्षण भी कहिए। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जिस ज्ञान से पाप दूर होता है वह कहता हूं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से उत्पन्न देह स्थूल है, किंतु सूक्ष्म देह अन्य प्रकार का होता है। इति ज्ञान संकुली तंत्रम समाप्तम्।